का था, रूह वही रूप नया।
रक्तमंडल के पहले भाग में आपने सुना कि बाबू बटुक चंद का बेटा किसी के द्वारा अगवा कर लिया गया और फिरौती में 1,00,000 रुपए की मांग की गई। बाबू बटुक चंद राय साहब न बन सके। बच्चे के अगवा होने और राय साहब न बनने वाली खबरों ने उन्हें बुरी तरह तोड़ दिया। बाबू बटुक चंद चाह कर भी महकमे के या पुलिस के किसी बड़े आदमी की मदद नहीं ले सकते, क्योंकि उन्हें आगाह किया गया था। क्या होगा उनके अगवा किए हुए बेटे का हश्र, जानने के लिए सुनिए भाग दो। पौ फट गई है, परंतु सूर्य देव के आगमन की सूचना देने वाली लाली अभी आसमान पर फैली नहीं है। ऐसे समय में बाबू बटुक चंद अपने मकान के बाहर निकले। दरवाजे पर उनकी छोटी 2 आदमियों के बैठने वाली मोटर खड़ी थी। बटुक चंद उसके पास गए और ड्राइवर को उतर जाने का इशारा किया। जब वो उतर आया तो खुद व्हील पर जा बैठे और उससे बोले, तुम्हें चलने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही जाऊंगा। फटफट की आवाज के साथ इंजन चला और झटके के साथ मोटर आगे बढ़ गई। तेज चाल से बटुक चंद ने शहर की सड़कें पार की और तब उस सड़क पर घूम गए जो सारनाथ से होती हुई गाजीपुर के लिए जाती थी। बनारस से गाजीपुर करीब 40 मील पड़ता है और वहां जाने की सड़क बहुत ही रमणीक स्थानों से होती हुई कई जगह गंगा जी के इतने पास से गुजरती है कि सड़क पर से उनके दर्शन हो जाते हैं। कई पुराने जमाने की इमारतें और ऐतिहासिक खंडहर इस सड़क पर पड़ते हैं। बटुक चंद ने मोटर को पूरी तेजी से छोड़ दिया और वो घंटे में 60 मील की तेजी से दौड़ने लगी। 1 घंटे के कुछ अंदर ही बटुक चंद गाजीपुर पहुंच गए। दूर से वहां की अफीम कोठी का ऊंचा बुर्ज देखकर उन्होंने मोटर की चाल कम की और तब उस सड़क पर घूम गए जो मुख्य सड़क से कटकर अफीम के कारखाने को जाती है। गंगा से कुछ ही हटकर 3-4 खूबसूरत और आलीशान बंगले बने हुए थे, जिनमें से एक के आगे उन्होंने अपनी मोटर रोकी और फाटक खोलकर भीतर घुसे। एक नवयुवती मेम अपने 2 सुंदर बच्चों के साथ बंगले के सामने वाले कमरे में टहल रही थी। मोटर की आवाज सुनकर वो चौंकी और जब बटुक चंद को अपनी तरफ आते देखा तो उनकी तरफ ताज्जुब के साथ बढ़ी। जरा आगे बढ़ने पर दोनों ने एक दूसरे को पहचान लिया। बटुक चंद ने बड़े तपाक के साथ मैम से हाथ मिलाया और मैम ने उनसे पूछा, हेलो राय साहब, इस वक्त इतना सुबह सुबह कहाँ? बटुक चंद दोनों लड़कों को प्यार करने के बाद बोले, किंग साहब से कुछ जरूरी बात करनी है, क्या वे उठ गए हैं? मिसेस किंग बोली, वे अपने कमरे में सुबह कुछ काम कर रहे थे, कब के उठ गए हैं, मैं अभी उनको आपके पास आने की खबर पहुंचाती हूँ। मेम साहब ने लड़कों को खेलने को कहा और खुद बंगले की तरफ बढ़ी। बटुक चंद उनके साथ हो लिए। बंगले के पास पहुंचते ही किंग साहब से उनकी मुलाकात हुई जो सीढ़ियां उतर रहे थे। बटुक चंद को देखते ही वो आगे बढ़ाए और प्रेम के साथ हाथ मिलाकर बोले, इतना सुबह आज आप कहाँ? बटुक चंद ने कहा, मैं बहुत बुरी मुसीबत में पड़ गया हूँ और आपसे सलाह लेने आया हूँ। मिस्टर किंग ने चौंक कर कहा, कैसी मुसीबत? बटुक चंद बोले, भीतर चलिए तो सुनाऊं। किंग उनका हाथ पकड़कर भीतर चले गए। मौका समझ मिसेस किंग बाहर ही रह गईं। अपने प्राइवेट कमरे में ले जाकर किंग ने बटुक चंद को एक कुर्सी पर बैठाया और आप सामने बैठकर पूछा, हाँ तो बताइए क्या मामला है? बटुक चंद ने अपने चारों तरफ निगाह डाली और तब जेब से वो पहली चिट्ठी जो उन्होंने दुष्टों की तरफ से पाई थी उसे निकाल कर उनके सामने रख दी। किंग ने उसे उठा लिया और चुपचाप पढ़ने लगे। ज्यों ज्यों चिट्ठी पढ़ते जाते थे उनके चेहरे से घबराहट और परेशानी प्रकट होती जाती थी, और जब समूची चिट्ठी खत्म कर वे उस जगह पहुंचे जहां दस्तखत की जगह पर लाल धब्बा बना हुआ था तो एकदम से उछल कर बोले, ओफ ओह ओ माई गॉड, ये तो उन्हीं शैतानों की कार्रवाई है जिन्होंने अपने आप को रक्त मंडल के नाम से मशहूर कर रखा है। बटुक चंद ने ताज्जुब से कहा, ये रक्त मंडल क्या है? किंग साहब बोले, ओह माय गॉड, वो खूनी और शैतानों की एक कमिटी है जिसका सारा काम रईसों और भले लोगों को तकलीफ पहुंचाना है और सरकार को तंग करना है। उसका हेड कोई नहीं है। देर आर फोर पीपल एंड दे आर कॉल्ड भयानक चार। उनकी कम्बख्त निगाहें जिस पर पड़ती है उसकी खैरियत नहीं होती है। बटुक चंद कांप कर बोले, आपको इनका हाल कैसे मालूम हुआ? किंग साहब ने कहा, जब मैं बनारस का पुलिस सुपरिटेंडेंट था तभी मुझे ये मामले की खबर लगी थी। इधर तो मैं खुद इनके पेड़ में पड़ गया हूँ। लुक, आई गॉट दिस लेटर 4 days back। कहकर किंग साहब ने चिट्ठी दराज से निकाली और बटुक चंद को दिखाई। बटुक चंद ने उसे पढ़ा। लिखा हुआ था, मिस्टर किंग, हमारी संस्था ने यह निश्चय किया है कि इस देश से सब तरह के नशे, शराब, गांजा, अफीम आदि आदि का निशान मिटा दिया जाएगा, जिसने देशवासियों की आत्मा, देह और मन को चौपट कर उन्हें गुलामी की बेड़ी पहना रखी है। इसलिए तुम्हें खबर दी जाती है कि अगर आज से 15 दिन के भीतर तुम अपनी अफीम की कोठी बंद करके सब तैयार अफीम बर्बाद न कर डालोगे तो तुम्हारा और तुम्हारी कोठी का नामो निशान मिटा दिया जाएगा। खबरदार, खबरदार, खबरदार। इस चिट्ठी के नीचे भी उसी प्रकार के खून के धब्बे के गोल दाग थे और बीच में 4 उंगलियों के निशान। बटुक चंद बोले, खैर आप तो सरकारी नौकर हैं और सरकार आपकी मदद करेगी, मगर मैं गरीब तो बेमौत मर रहा हूं, किसी से फरियाद भी नहीं करने पाता। कल कलेक्टर साहब से मिलने गया था, सोचा था इस बारे में उनसे मदद लूंगा, मगर वहां भी एक कमबख्त आ पहुंचे। इतना कहकर बटुक चंद ने कल का सब हाल सुनाया और वो दूसरी चिट्ठी भी आगे रख दी। किंग साहब सब हाल सुनने के बाद बोले, वेल, ये रास्कल्स का जाल कुछ इस तरह का फैला हुआ है कि इसे कोई बात नहीं छिपती। बटुक चंद ने कहा, मगर अब मेरी जान तो किसी तरह छुड़ाइए, कोई तो ऐसी तरकीब निकालिए कि मेरा रुपया भी बर्बाद ना हो और बेटा भी वापस मिल जाए। किंग साहब कुछ देर तक सोचने के बाद बोले, अच्छा मुझे एक तरकीब सूझी है, बेईमानों के साथ बिना धोखेबाजी से काम किए बात नहीं बनेगी, आप ऐसा कीजिए। दोनों में धीरे धीरे कुछ बातें होने लगी। दिन 2 घंटा चढ़ चुका था जब बटुक चंद किंग साहब से विदा हुए और अपने घर की तरफ लौटे। रात आधी के लगभग जा चुकी थी। बाबू बटुक चंद के पिसन हरिया वाले बागीचे में इस समय बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ था। माली, चौकीदार और सिपाही सभी रात की पहली नींद में गाफिल थे। सिर्फ बीच वाली इमारत के सबसे ऊपर के कमरे में 2 आदमी एक टेबल के पास बैठे हुए धीरे धीरे कुछ बातें कर रहे थे। इनमें से एक तो हैं बाबू बटुक चंद और दूसरे मिस्टर किंग। टेबल पर एक लैंप जल रहा था जिसकी रोशनी मध्यम की हुई थी। न जाने कब से ये लोग यहाँ बैठे हुए थे, परंतु जिस समय घड़ी ने 12 बजाए उस समय किंग साहब ने एक अंगड़ाई ली और कहा, राय साहब, लेट्स गेट रेडी। राय बटुक चंद ने टेबल का दराज खोला, उसमें से नोटों की 2 गड्डियाँ निकाली और उन्हें गिना। हजार हजार के 50-50 के नोट थे, कुल 1,00,000 रुपए। नोटों को हाथ में लेते हुए एक बार बटुक चंद का कलेजा कांप गया और उन्होंने डरे हुए स्वर में कहा, देखिए किंग साहब, कहीं ऐसा ना हो कि 1,00,000 रुपया भी चला जाए और बेटा भी हाथ ना आवे। किंग साहब बोले, ऐसा नहीं होगा, मेरे नौकर बड़े होशियार हैं और उनके काम से किसी तरह की भूल नहीं होगी। You don't worry, मगर याद रखिए, जैसे ही आपका लड़का आपको मिलता है मुझे इशारा कीजिए और बागीचे के गेट को बंद कर लीजिए। ओके, अब आप गेट पर जाइए, मैं अपनी जगह पर जाता हूं। बटुक चंद उठ खड़े हुए, मगर उनके पैर कांप रहे थे। किंग साहब तो अपनी जेब से पिस्तौल निकाल और उसे खोलकर गौर से एक बार देखने के बाद दरवाजा खोल न जाने कहां चले गए। पर बटुक चंद डरते और कांपते हुए मकान के नीचे उतरे और बाग के फाटक पर पहुंचे। फाटक बंद था और बगल के दालान में पहरेदार पड़ा घुर्राटे ले रहा था। आहिस्ता से बटुक चंद ने फाटक की छोटी खिड़की खोली और सड़क पर निकल गए। बटुक चंद का ये बागीचा शहर के बाहर बड़े ही निर्जन और सुनसान स्थान में था। इसके चारों तरफ ऊंची चार दीवारी थी, जिसे टप कर किसी का यकायक भीतर चले आना बड़ा कठिन था। खासकर उसकी सड़क की तरफ वाली दीवार तो बहुत ही ऊंची थी, जिसमें सिर्फ यही एक फाटक था, जिसके दोनों तरफ बनी हुई नौकरों के रहने की इमारतें और अस्तबल वगैरह दूर तक चली गई थी। मगर उसका फाटक बहुत आगे जाकर पड़ता था। इस तरह यहाँ की सड़क दो तरफ से कोई 100 गज तक ऊंची दीवारों से घिरी हुई थी। बटुक चंद फाटक से बाहर निकले। चारों तरफ घोर अंधेरा था, हाथ को हाथ नहीं दिखाई देता था और तारों की रोशनी को ऊपर के पेड़ रोक रहे थे। फाटक के दोनों तरफ वाली लालटेनें भी बुझ चुकी थी। डर से कांपते हुए बटुक चंद अपने फाटक के सामने इधर से उधर टहलने लगे। टहलते हुए बमुश्किल 10 या 15 मिनट हुए होंगे कि किसी तरह की रोशनी की चमक बहुत दूर से उन्हें दिखाई पड़ी। वो चिहुक उठे और साथ ही उनका हाथ सामने की जेब में गया, जिसमें 1 लाख रुपए के नोट रखे हुए थे, जिसके नीचे उनका कलेजा जोर जोर से धड़धड़ कर रहा था। वे थोड़ा आगे बढ़कर देखने लगे और शीघ्र ही उन्हें मालूम हो गया कि वो एक साइकिल की रोशनी है, जो कुछ तेजी से उसी तरफ चली आ रही है। वे फिर लौटकर अपने फाटक के पास हो गए और हाथ पीछे कर ये विश्वास कर लेने के बाद कि खिड़की खुली हुई है और वे मौका पड़ने पर तुरंत भीतर भाग सकते हैं, अपने कलेजे को जोर से दबाकर एक जगह खड़े हो गए। देखते ही देखते साइकिल नजदीक पहुंची और रुक गई। बिजली बत्ती की तेज चमक उनके चेहरे और आसपास की चीजों पर पड़ी और तब कुछ देर इधर उधर दौड़ती रही। इसके बाद वो रोशनी बंद हो गई और मानो ये निश्चय कर लेने के बाद कि वहां पर सिवाय बटुक चंद के और कोई नहीं है, साइकिल सवार पुनः आगे बढ़ा। कुछ ही सेकंडों में वो इनके पास आ पहुंचा और साइकिल पर चढ़े ही चढ़े अपने पैर जमीन पर टेक कर खड़ा हो गया और उसने कहा, कौन खड़ा है? बटुक चंद? ये सवाल कुछ ऐसे रौब के साथ किया गया था कि खामखा खुशामदी बटुक चंद के मुंह से निकल गया, जी हुजूर। इसके साथ ही उन्होंने जुबान रोकी, मगर उसी समय आदमी ने दोबारा पूछा, क्या इरादा है, रुपए लाए हो? बटुक चंद ने हाथ जोड़ कांपते कांपते कहा, हुजूर, मैं गरीब। इस पर आदमी ने इनकी बात खत्म न होने दी और डपट कर कहा, बक बक मत करो, हमें मालूम है कि आज ही तुमने 1 लाख रुपए के नोट बैंक से मंगवाए हैं। अगर तुम अपने लड़के को जिंदा देखना चाहते हो तो रुपया हमारे हवाले करो, नहीं तो उसकी लाश देखने के लिए तैयार हो जाओ। बटुक चंद का मुंह खुला पर जवाब उससे बाहर न निकल सका। एक गहरी सांस लेकर जो उनके कलेजे को फोड़ती हुई निकल रही थी, उन्होंने जेब में हाथ डाल और नोटों के दोनों बंडल निकालकर उस आदमी की तरफ बढ़ाए। उस आदमी ने बंडल ले लिए और साइकिल के लैंप की रोशनी में उन्हें गौर से देखा। जिस समय वो हैंडल पर झुका हुआ नोटों को जांच रहा था, उस समय लैंप की रोशनी पड़ने से बटुक चंद ने देखा कि उस आदमी की पोशाक लाल रंग की है, यहां तक कि हाथों में लाल दस्ताने चढ़े हुए हैं और चेहरे पर लाल नकाब पड़ी हुई है। तेजी मगर कुछ लापरवाही के साथ उस आदमी ने नोटों को गिना और तब दोनों बंडलों को जेब के हवाले करते हुए कहा, ठीक है, तुमने बुद्धिमानी की जो हम लोगों से दुश्मनी मोल नहीं ली, मैं जाता हूं, मेरे पीछे मेरी ही तरह के 10 आदमी और आवेंगे। जब सब निकल जाएं, तो बाहर वहां आदमी जो इधर से जाएगा वो तुम्हें तुम्हारा लड़का देता जाएगा। किंग साहब इस फिक्र में पड़े थे कि जिस तरह हो ऐसा करना चाहिए कि बटुक चंद्र का लड़का भी मिल जाए और उनका रुपया भी न मारा जाए और वो दुष्ट लोग गिरफ्तार कर लिए जाएं। इसके लिए उन्होंने इंतजाम भी बहुत अच्छा किया था। हम ऊपर देखाए हैं कि बटुक चंद के बागीचे के बाहर की सड़क काफी लंबी और दोनों तरफ दीवारों से घिरी हुई थी। इन दीवारों के सबब से कोई आदमी जो इधर से जाने वाला हो 200-300 गज तक सिवाय आगे जाने के या पीछे लौटने के कहीं और नहीं जा सकता। और किंग साहब ने इसी बात का फायदा उठाना चाहा था। उनके दो खास आदमियों की मातहती में 20 होशियार और मजबूत आदमी बहुत पहले से काम कर रहे थे। इस सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूर पर ऊंचे इमली और सेमल आदि के पेड़ थे। इनमें से 10 पेड़ों पर इस समय 10 आदमी बंदूकें लिए हुए बैठे थे और बाकी के 10 आदमी हाथ में लोहे की पतली मगर मजबूत तारें, जिनका एक एक सिरा उन्होंने पेड़ों से बांधा था और पेड़ों की आड़ में छिपे हुए खड़े थे। किंग साहब का हुक्म था कि जिस समय मेरी सीटी एक दफे बजे, उसी समय ये तार वाले आदमी दौड़कर अपने ठीक सामने सड़क के दूसरी तरफ चले जाएं और तार के दूसरे सिरों को सामने के पेड़ों से कसकर बांध दें। जिस समय सड़क पर 10 जगह इस तरह 10 तारें बंध जाती, तो उस समय घोड़ा, मोटरसाइकिल या पैदल किसी का भी अचानक एक तरफ से दूसरी तरफ निकल जाना कठिन था, क्योंकि अंधेरे में ये पतली तारें दिखती ही नहीं और भागने वाले इनसे लड़कर चोट जरूर खाते, जिससे उन्हें रुकना मजबूरी हो जाता। किंग साहब का दूसरा हुक्म ये था कि जिस समय उनकी सीटी 2 बार बजे, उसी समय पेड़ के सिपाही गोलियों की बाढ़ हवा में दागना शुरू कर दें और जैसे ही वे तीसरी सीटी सुने, पेड़ से उतर आएं और सब लोग मिलकर डाकुओं को गिरफ्तार कर लें। इस प्रकार सब तरह का पक्का इंतजाम करके किंग साहब खुद भी एक पेड़ की आड़ में पिस्तौल लिए खड़े थे और उन्हें पूरा निश्चय था कि उनकी इस तरकीब द्वारा डाकू जरूर पकड़े जाएंगे। किंग साहब का विश्वास था कि रक्तमंडल वाले कम से कम 10-15 आदमी के गिरोह में जरूर होंगे, क्योंकि आखिर उन्हें भी तो अपने पकड़े जाने का अंदेशा होगा। मगर इसके विपरीत, जब उन्होंने सिर्फ एक आदमी को मामूली तौर पर साइकिल पर चढ़े आते देखा, तो उन्हें ताज्जुब हुआ। वे कुछ निश्चय नहीं कर सके कि इसे रक्त मंडल का आदमी समझे या कोई मामूली मुसाफिर। इसलिए वे इसी उधेड़ बुन में पड़े रह गए और वो साइकिल सवार उनके सामने से गुजर गया। तब वो पेड़ की आड़ से बाहर निकले और फाटक की तरफ देखने लगे। बहुत गौर से देखने पर उन्हें मालूम हुआ कि उस आदमी ने बटुक चंद से कुछ बातें की और बटुक चंद ने उसे कुछ दिया। वे समझ गए कि जरूर ये कुछ वही मामला है, मगर वे तब तक कुछ नहीं कर सकते थे जब तक कि बटुक चंद का लड़का उन्हें मिल न जाता। और वे बंधा हुआ इशारा न करते, क्योंकि उन्हें अंदेशा था कि अगर वो ये इशारा कर दें और जरा भी जल्दबाजी कर दी जाए, तो ताज्जुब नहीं कि उस बेचारे लड़के की जान चली जाए। क्योंकि अपने को फंसा देखकर रक्तमंडल वाले दया क्या चीज है इसे बिल्कुल जानते तक नहीं, लड़के को जरा भी जीता ना छोड़ेंगे। इसी से वे ठीक ठीक कुछ निश्चय ना कर सके और चुपचाप खड़े रह गए। वो आदमी आगे बढ़ गया और सड़क पर अंधेरा छा गया। थोड़ी देर बाद एक दूसरा आदमी साइकिल पर आता दिखा। किंग साहब होशियार हुए, पर यह आदमी बिना रुके या बटुक चंद से कुछ बात किए बगैर आगे बढ़ गया। इसके कुछ देर बाद तीसरा आदमी आया और चला गया, और तब इसी तरह कई आदमी साइकिल पर सवार आए और चले गए। अब किंग साहब घबराए और सोचने लगे कि आखिर ये क्या मामला है। उनकी कुछ भी समझ में नहीं आया और अंत में वे दीवार के साथ साथ आड़ आड़ होते हुए बटुक चंद के पास पहुंचे, जो एक तक मूरत की तरह फाटक के सामने खड़े हुए थे। किंग साहब ने उनकी कोहनी पकड़कर हिलाई और धीरे से पूछा, बटुक चंद, आखिर क्या मामला है? रक्त मंडल वालों ने तुमसे कुछ बात की या नहीं? Why are you silent? बटुक चंद ने धीरे और संक्षेप में बातें कहीं और अंत में बोले, उस पहले आदमी के बाद 9 आदमी जा चुके हैं और एक और जाने के बाद जो बाहरवा आवेगा वो मेरा लड़का लेता आवेगा। किंग साहब ने सुनकर दांत पीस लिए और कहा, ओ माय गॉड, मेरा सब आइडिया बेकार चला गया। खैर, मैं 12th आदमी को गिरफ्तार कर लूंगा, बटुक चंद ने कहा। खैर, जो चाहिए कीजिए, अगर मेरा तो 1,00,000 रुपया चला ही गया ना। अब इतना ख्याल रखिएगा कि लड़का जीता जागता मिल जाए। अब तक जो होना था सो हो चुका। इसी समय 11वां आदमी उनके सामने से गुजरा। किंग साहब होशियार हो गए, सीटी जेब से निकाल उन्होंने हाथ में ले ली और इस फिक्र में हुए कि 12वें आदमी उधर से जाए और वो सीटी बजाए जिसके साथ ही सड़क तारों से घिर जाए और वो आदमी गिरफ्तार हो जाए। यकायक एक काली छोटी चीज सड़क पर दौड़ती हुई अपनी तरफ आती दिखाई दी, जो फाटक के सामने आकर रुक गई। मिस्टर किंग और बटुक चंद ने गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो लड़कों को घुमाने वाली एक छोटी सी हाथ गाड़ी है जिसके अंदर कोई बच्चा लेटा हुआ था। बटुक चंद ने झुक कर देखा तो उन्हीं का बच्चा था जो इस समय गहरी नींद में था। उन्होंने गाड़ी का हैंडल पकड़ लिया और उसे घुमाकर फाटक के अंदर ले गए। उस समय मालूम हुआ कि उसके साथ एक लंबी रस्सी बंधी हुई थी जिसका दूसरा सिरा शायद आगे जाने वाले साइकिल सवार के हाथ में था। बटुक चंद ने बाग के अंदर के एक लैंप के नीचे जाकर अपने बच्चे को अच्छी तरह देखा और एक लंबी सांस लेकर बोले, किंग साहब, आपकी कारीगरी कुछ काम ना आई, मेरा तो 1,00,000 रुपया चला ही गया। खैर, मेरा बच्चा मिल गया, यही गनीमत है, किंग साहब ने कहा। ओ माय डियर, मुझे बहुत बड़ा अफसोस है कि ये ट्रिक काम नहीं आई, बट तुम्हारे रुपए जाने का तुमको अफसोस नहीं करना चाहिए, बटुक चंद ने ताज्जुब से कहा। अच्छा, वो क्यों, किंग साहब ने कहा। जब वो सब नोट जो तुमने उनको दिए है वो एकदम रद्दी है, नकली नोट जांच के लिए मेरे पास आए थे, मैंने तुम्हारी गैर हाजिरी में तुम्हारे दोनों बंडल निकाल कर नकली नोट ड्रॉर में रख दिया था। वो असली नोट तुम्हारे नीचे के ड्राइंग रूम वाले कमरे के टेबल के ड्रॉर में है, जाकर देख लो। बटुक चंद के मुंह से खुशी की एक किलकारी निकल गई। वे लड़के की गाड़ी को दौड़ाते हुए अपने बैठक घर के सामने पहुंचे और गाड़ी तथा लड़का नीचे ही छोड़कर सीढ़ियां चढ़ने के बाद कमरे में पहुंचे। पीछे पीछे किंग साहब भी पहुंचे। बटुक चंद ने रोशनी की। किंग साहब ने कहा, डैट लेफ्ट साइड ड्रॉर, ओपन डैट। बड़ी उत्कंठा के साथ बटुक चंद ने दराज खोला, मगर भीतर कुछ भी न था। बटुक चंद ने इधर उधर देख कर कहा, कहा, इसमें तो कोई बंडल नहीं है। ताज्जुब के साथ किंग साहब ने भी आगे बढ़कर देखा, मगर उस दराज में नोट थे ही कहां जो दिखाई पड़ते। आश्चर्य में डूबकर उन्होंने कहा, स्ट्रेंज, दिस इज स्ट्रेंज, आई केप्ट दोज नोट्स हियर इन दिस ड्रॉर, मैंने अपनी हाथ से वो बंडल इधर रखा था। इसी समय बटुक चंद की निगाह लाल कागज के टुकड़े पर पड़ी जो उसी दराज में पीछे की तरफ था। कांपते हुए हाथों से उन्होंने उसे उठाया और खोलकर पढ़ने लगे। ये लिखा हुआ था, रक्त मंडल के ही साथ चला कि ये नहीं सोचा कि तुम्हारे जैसे नौसिखियों को अभी हम लोग 10 बरस तक चला सकते हैं। बटुक चंद, तुम्हारा 1,00,000 रुपया तो गया ही, अब तुम अपने लड़के से भी हाथ धो बैठो। हाँ, काश तुम अगर 2,00,000 रुपया खर्चने को तैयार हो जाओ तो शायद उसे दोबारा पा जाओ। किंग, तुमने नाहक ही इस मामले में हाथ डालकर बटुक चंद का बुरा किया है और हम लोगों से दुश्मनी खरीदी है। तुम्हारी बीवी सुबह से गायब है, जाओ पहले उसे खोजो। इसके नीचे रक्त मंडल का लाल निशान था। चिट्ठी पढ़कर बटुक चंद के मुंह से चीख निकल गई। उन्होंने कागज किंग साहब के सामने फेंक दिया और दौड़कर उस गाड़ी के पास गए जिनमें उनका लड़का सोया हुआ था। लड़के को गाड़ी से उठाते ही सब कलई खुल गई। वो सिर्फ एक मोम का पुतला था जो रंग रंगाकर ठीक उनके लड़के की सूरत का बना दिया गया था। बटुक चंद के मुंह से फिर एक चीख निकली। ये दोहरी चोट उनका दिमाग सह नहीं सका और वे उसी जमीन पर गिर गए और बेहोश हो गए। राय बहादुर बाबू नकुल चंद का बाग इस समय हजारों रोशनियों से जगमगा रहा था। बीच की आलिशान इमारत तो दिन की तरह चमक रही थी। बाग और इमारत में सैकड़ों आदमियों की भीड़ इधर से उधर घूमती फिरती दिखाई दे रही थी और बड़े फाटक पर, जिसके ऊपर रोशनी से स्वागतम लिखा हुआ था, सैकड़ों सवारियों की लंबी कतार जुट रही थी। इसके बगल में ही एक दूसरा इससे कुछ छोटा सा दरवाजा था, जिस पर कई औरतों का गिरोह नजर आ रहा था। मर्दानी सवारियां इस बड़े फाटक पर उतरतीं और जनानी उस दूसरे पर। इस जगह के मालिक बाबू नकुल चंद ने इस बार राय बहादुरी पाने की खुशी में आज अपने दोस्तों और मेहरबान अफसरों की दावत की थी। केवल उन्हीं की नहीं, बल्कि उनकी औरतों और बिरादरी की औरतों को भी न्योता दिया गया था। नकुल चंद की स्त्री की दौड़ धूप और खुशामद की बदौलत शहर से दूर होने पर भी औरतों की काफी तादाद नजर आ रही थी, जिन्हें वो खुद रिसीव कर रही थी और जो उस दूसरे दरवाजे की राह अलग ही अलग भीतर के जनाने महल में पहुंच रही थी, जहां उनके लिए तरह तरह के खातिर तवाजों के सामान जुटाए गए थे। मर्दों के बैठने के लिए बाग के बीच वाले लॉन पर एक बहुत बड़ा शामियाना टांगा गया था, जिसके नीचे गाने बजाने और भोज की तैयारियां हो रही थीं। चारों तरफ बड़ी चहल पहल, दौड़ धूप और गुल शोर मचा हुआ था, जिसके बीच बाबू नकुल चंद फिरकी की तरह व्यस्त और परेशान घूम रहे थे। चारों तरफ जगह जगह लगे हुए और रोशनी से जगमगाते खूबसूरत छोटे बड़े खेमों और शामियानों में से एक में चलिए हम अपने सुनने वालों को ले चलते हैं। इसके बीचों बीच में संगमरमर का एक बड़ा सा टेबल है, जिस पर लेमोनेड सोडा और अन्य बहुत सारी बोतलें दिख रही हैं और चारों तरफ की कुर्सियों में से एक पर बनारस के पुलिस सुपरिटेंडेंट मिस्टर गिब्सन, दूसरी पर राय साहब बाबू बटुक चंद, तीसरी पर फौज के कप्तान मिस्टर फैनकिक और बाकी तीन चार कुर्सियों पर और कई अफसर और रईस बैठे बातें कर रहे हैं। और तो सभी खुश हैं, मगर बाबू बटुक चंद के चेहरे पर अफसोस की काली छाया पड़ी हुई दिखाई देती है। अचानक दरवाजे पर छाया पड़ी और एक आदमी भीतर आया और ये गाजीपुर की अफीम कोठी के मैनेजर मिस्टर किंग थे। ओहो, सो यू ऑल आर हियर, वाओ, कहते हुए उन्होंने सभी से हाथ मिलाया और तब बटुक चंद के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गए। उसी समय उनकी निगाह बटुक चंद के उदास चेहरे पर पड़ी और उन्होंने झुककर धीरे से कहा, व्हाई मिस्टर बटुक चंद, व्हाई आर यू सो सैड? बटुक चंद ने किंग की तरफ विचित्र निगाह डालकर कहा, आप तो जानते ही हैं किंग साहब, क्या तुम अपने लड़के के गम में? बटुक चंद ने सिर हिला दिया। किंग साहब ने पुनः कहा, क्या अभी तक उसका कोई पता नहीं लगा? बट डोंट वरी, लगेगा ही, इतना परेशान होने की क्या बात है? मुझे देखो, माय वाइफ इज आल्सो किडनैप्ड। मुझे तुमसे कहीं ज्यादा फिकर है, मगर मैं इसके लिए चारों तरफ सैड होकर नहीं घूम रहा हूं।
क्या आपकी पत्नी का भी अभी तक कोई पता नहीं लगा?
नो, नॉट एट ऑल, मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि जल्दी पता लग जाएगा। गिब्सन मिस्टर बहुत कोशिश कर रहा है और मैं भी बहुत ट्राई कर रहा है।
ठीक है, मगर दूसरों के लिए तो उतना जोर नहीं लगाया जा सकता ना। मेरा लड़का चाहे मर जाए या जिए, इसकी किसी को क्या परवाह है?
किंग साहब ने यह सुनकर तेजी से बटुक चंद की तरफ देखा और वो कुछ कहना ही चाहते थे कि उसी समय खेमे के दरवाजे पर कलेक्टर साहब दिखाई पड़े, जिनको बाबू नकुल चंद बड़ी तवज्जो और खातिर से बार बार झुकते और सलामे करते हुए अपने साथ ला रहे थे। उन्हें देखते ही सब लोग हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए। कलेक्टर साहब ने हंसते हुए सबसे हाथ मिलाया और दो चार बातें की। इसके बाद मौका देखकर नकुल चंद ने नम्रता से कहा, अगर हुजूर उधर तशरीफ ले चलें तो खेल शुरू कर दिया जाए। कलेक्टर साहब चलने को तैयार हो गए और नकुल चंद इन सभी को लिए हुए उस आलीशान शामियाने की तरफ बढ़े जिसमें एक छोटे थिएटर का स्टेज खड़ा किया गया था और उसके बगल वाले दूसरे शामियाने में दावत का इंतजाम था। थिएटर वाला शामियाना महल के साथ सटा हुआ था और स्टेज इस तरह खड़ा किया गया था कि महल की खिड़कियों में से, जिन पर की चिकें पड़ी हुई थी, औरतें भी बखूबी ये तमाशा देख सकें। कलेक्टर साहब के साथ इधर उधर फैले हुए सभी आदमी उसी तरफ इकट्ठा होने लगे और फाटक तथा बाह में एक तरह का सन्नाटा हो गया। केवल नौकर, सिपाही आदि ही इधर उधर घूमते फिरते दिखाई पड़ रहे थे। बाकी चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ सन्नाटा हो गया था। क्या रक्त मंडल के लोगों ने सन्नाटे का फायदा उठाया और क्या यहां पर भी वही लूटपाट सामने आई जिसकी कि वो नौजवान चर्चा कर रहा था? ये जानने के लिए सुनिए भाग 3 सिर्फ गाथा पर।